पिछली संस्था के मेरा आपसे प्रार्थना है कि जो हमारी गायत्री है उसमें गुरु गायत्री जी भी होगा, उसको भी थोड़ा सा ताकि प्रवेश करने का भी मार्ग हम उसी ध्यान से आगे बढ़ सकते हैं। आपकी भी तो दीक्षा हो गई गायत्री का, तो ब्रह्म गायत्री का कसम भी बहुत लगा है। गुरु गायत्री का है कहा मनाता है, हमें अपने आत्मा को या अपना जो कुछ कहा जाने वाला, और ये शरीर है तुम शरीर और मन बुद्धि अहंकार चित्त का है, ये दोनों और आत्मा, ये तीनों का साथ है। अभी हम लोगों का कि आत्मा भी विकसित नहीं है, इसलिए शरीर और मन ही हमारा प्रधान है। स्व मन अपने को गुरु के चरणों में स्वाहा, जैसे यज्ञ में ये आहुति दी जाती है, मैं अपने को आहुति दे रहा संपूर्ण रूप से समर्पण अपने, और वो गुरु जी हमें सिखाते ऐसी भावना से। तो ये गुरु कौन है, तो बच्चे उसको स्पष्ट रूप से बदला कर। अब वहाँ पर तो स्वाहा आपने को दिया है, और यहाँ पर कुछ वो हमारे हृदय में प्रकाशित एंड गुरु देवाज विघ्न है। गुरुदेव को मैं विघ्न भी जानता हूँ, कौन वो है, कृष्णानंदायक भी नहीं। वो जो गुरु हमारे हैं कृष्ण के आनंद देने की वाली मूर्ति है, कृष्ण को आनंद देने वाली
वो आनंद
मूर्ति मूर्ति स्वरूप कृष्ण आनंद आया। कृष्ण को कैसे आनंद देते हैं, साधारण रूप में इस जगत में तो अपने सब कुछ उनको अर्पण करके सेवा करते हैं, मंदिर की सेवा करते हैं, जैसे गुरुवाष्टक में है निकुंज जी में इत्यादि। उनका दो स्वरूप लेना पड़ेगा, एक तो इस वर्तमान रूप में वो जैसे हैं, और एक लेना पड़ेगा उनका शुद्ध सिद्ध शरीर। यदि सिद्ध शरीर व्यक्त करते हैं या उसका रेफरेंस कुछ मिलता है तो उस रूप में हम समझें, नहीं तो मोटा मोटी ये समझना पड़ेगा कि उनका सिद्ध शरीर जरूर है, और उसी शरीर से वो कृष्ण का आनंद दे रहे हैं। सख्य भाव में यदि है तब तो बलदेव प्रभु के प्रकाश है, और वो कृष्ण का सब प्रकाश से सख्य भाव में सेवा कर, वात्सल्य रस का है तो वात्सल्य रस में सेवा कर। और हमारे संप्रदाय में अधिकांश जो आने वाले होते हैं उनकी यही टेंडेंसी होती है, ये रूप को फॉलो करो, रूप उत्साह, रूप का विचार ही है। जीव जो है वो मंजरी स्वरूप है, मंजरी स्वरूप किसको कहते हैं, जैसे कोई लता है, तो लता में जब आती है तो उसकी मंजरियाँ होती हैं, जैसे तुलसी जी की मंजरी होती है, मंजरियों से फूल होते हैं, और फूल के बाद में तब उसमें फल लगता है। तो मंजरी का मतलब जैसे तुलसी का मंजरी, इसमें फल भी अलग से नहीं होता, फूल भी यही है, मंजरी भी यही है, तो गोपियाँ भी ऐसी ही हैं। मूल लता तो राधा जी हैं, उसके पत्ते जो हैं ये गोपियाँ हैं, और रूप गोस्वामी प्रकृति जो है ये जो मंजरी, ये मंजरियाँ हैं। तो लता के हिलने से, लता को सिंचने से पत्ते जितने हैं सब भरे भरे हो जाएंगे, और ऑटोमेटिक रूप में वो मंजरी भी विकसित रहेगी, उसमें सुगंध आएगा। पत्ते में सुगंध तो नहीं आएगी किंतु उसमें सुगंध है, और हवा के झोंकों में जबकि लता में लगती है और सींचा जाता है, हवा के झोंके से वो मंजरी सूखती है, लता को आनंद होने से उसको आनंद होता है। यहाँ पर जो अनर्पित चरिन चिरार करुणावतर न कलौ समर्पयितुम् उन्नत ज्वल रसांश भक्ति श्री,
हरिहरपुर सुंदर दूत कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदर स्फुरत में सचिनंदन। जो राधा जी के भाव और कांति को लेकर के कनक मने सोने की जैसे राधा जी की दीति को जो धारण किए हैं, ये चैतन्य महाप्रभु। और अर्पित चरिंग, चरिंग चिरात मन होता है बहुत दिनों से, अनर्पित जो नहीं दिया गया, बहुत दिनों से जो नहीं दिया गया है, दिया गया है किंतु बहुत दिनों तक नहीं दिया गया है। कितना, एक कल ब्रह्मा जी के एक दिन, तो एक ही बार कृष्ण आते हैं महाप्रभु में,
एक ही बार आते हैं
बस, तो उस कल। और इसमें 71 चतुर्दुगी होती है किंतु वो आते हैं एक ही बार महाप्रभु जी भी और कृष्ण। तो इतने दिनों तक जो प्रेम नहीं किया गया था अनर्पित चरिंग चिरा बहुत चिरकाल से, अनर्पित चरिंग चिरा करुणिया वतीर्ण हलो, कलि में वो करुणा करके उसको देने के लिए आए। क्या देने के लिए? समर्पयितुम, समर्पण करने के लिए। किसको? जीवों को समर्पयितुम। उन्नत उज्ज्वल रसन, उन्नत उज्ज्वल रस, उन्नत उज्ज्वल रस का माने गोपियों के पार्थिव भाव को। पार्थिव भाव तो जानते हैं ना, गोपियों की दूसरी जगह शादी है या शादी हुई ही नहीं है, एक कुमारिका होती है कृष्ण की और एक होती है जिनका विवाह हो गया, दो प्रकार की गोपी है। दोनों का कृष्ण के प्रति अत्यंत प्रेम है, वो भी छिप करके जाती है जो कन्या है, कन्या का है। क्यों? पिता माता और दूसरे लोग क्या कहेंगे, अभी तो शादी हुई नहीं और कृष्ण के पास नहीं जा रहे, वो भी छिप करके जा रहे। और जिनकी शादी हो चुकी है, अभी अभी लड़के नहीं हुए हैं, लड़के होने सारा साधा कर जाएगा और कृष्ण उसको ग्रहण नहीं करेंगे, उसके लिए प्रतीक्षा हो गया, सब कुछ हो गया। अब तो दोपहर का आप लोग निश्चिंत हैं कि अभी आप
बिल्कुल निश्चिंत जी, अब तक परसों तक निश्चिंत है, कल एक आशी है परसों तक निश्चिंत हो गए।
भाव
का बता रहे थे,
उन्नत उज्ज्वल और रस के संबंध में बतला रहा है। तो ये मधुर रस दो प्रकार का है, एक पति और स्त्री भाव संयुक्त द्वारका में रुक्मिणी सप्तभामा इत्यादि 16,000 महिषी हैं, और पार्थिव भाव एकमात्र ब्रज में कृष्ण के प्रति दी है और कहीं नहीं है। तो इनमें भी बतलाना पहले जो दो कन्या का और प्रौढ़ प्रौढ़ उनको कहा था, प्रौढ़ मैंने जिनका विवाह हुआ है। और ये सखियां भी जो इस प्रकार की हैं, ये चार प्रकार की हैं। सखी नित्य सखी, प्रिय सखी, प्रिय नर्म सखी, चार वर्ण, ये चार प्रकार की सखी है। सखियां वो हैं जो कृष्ण के प्रति कुछ अधिक भाव वाली होती है, कृष्ण स्नेहाधिका, कृष्ण के प्रति स्नेह अधिक है। और ये जो नित्य सखियां हैं और प्राण सखियां हैं, ये दो प्रकार की सखियां हैं। सखी स्नेहाधिक हैं, राधा जी के प्रति उनका स्नेह अधिक है, तो ये सब समय कृष्ण राधा जी के पास में रहते हैं और दोनों का मिलन, दोनों का आनंद देना, दोनों की सेवा करते हैं, किंतु फिर भी राधा स्नेहाधिक हैं। और जो जो प्राण प्राण पृष्ठ हैं वो, और प्रिय नर्म सखियां हैं, प्रिय नर्म सखियां ललिता विशाखा चित्रा ये सब तो ये उभय पक्षी हैं, उभय स्नेहशीला, दोनों के प्रति स्नेहशीला, किंतु उसमें से भी होते हुए भी राधा के प्रति स्नेह भी थे। वो जो पहले जो दो बतलाया नित्य सखियां और पांच सखियां, ये राधा के पक्षी हैं और सब समय इनकी सेवा में ही रहती है, बिना मोल की इनकी दासी है, पाल्य दासियां हैं। जब राधा का राधिका जी यदि कोई सेवा देंगे तब फिर कृष्ण से मिलेंगे ये। और ये जो है राधा के समान है, ये जो अंतिम दो बदला है प्रिय नर्म सखी, और स्वतंत्र रूप में नायिका भी है, नायिका मैंने प्रिया स्वतंत्र रूप में कृष्ण से मिल सकती है, ये नहीं मिलेंगे। तो वो यदि राधिका जी ने मन कर लिया, मन टूटता नहीं है, तो राधा जी को डांट देंगे कृष्ण का पक्ष लेने, और यदि कृष्ण ने कुछ अन्याय के साथ में किया है तो कृष्ण को डांट देंगे ललिता इत्यादि
उभय जो,
और दोनों को मिलंकाएंगे। ये सखियों का काम है। इन्हीं से जो दो बतलाया नित्य सखियां और प्राण सखियां, ये मंजरी कहलाती है, राधा जी की खास सेविका है। तो अब उसको समझिए, समर्पयी तुम उन्नतोज्वल रसान, उन्नत उज्ज्वल जो रस है, अर्थात जो पारकीय भाव युक्त जो, ये सभी पारकीय है। तो ये जितने भी गोपियां हैं इनके भाव को पारकीय उन्नत उज्ज्वल रस कहा जाता है, मधुर रस कहा जाता है। तो उन्नत उज्ज्वल रसान स्वभक्ति, वो जो पारकीय भक्ति है उसमें स्वभक्ति, सब भक्ति स्वरूपणी जो राधा जी हैं, राधा जी स्व हैं कृष्ण की, भारतीय भाव युक्त श्रीमती राधिका जी वो कृष्ण की स्व है, स्व माने अपना खास, स्वभक्ति उसकी श्री माने शोभा, इसको देने के लिए। तो उस शोभा क्या है, जैसे लता की बेल की पत्तों से भी ऊपर मंजरी शोभा है, आप जब भी लता को आनंद होता है तो उसको डिनोट करता है, वो मंजरी डिनोट करती है। उसी तरह से राधा जी को जब सुख होता है कृष्ण से मिलन में, तो इन मंजरियों को राधा जी को देख करके ही, उनकी प्रसन्नता देख करके उनको व्यक्त हो जाती है प्रसन्नता। जैसे कृष्ण ने राधा जी का आलिंगन किया तो राधा जी को कंप अश्रु पुलक इत्यादि जो होगा वो सब उनके भाव में संचरित हो जाएगा। जितने उन्हें अनुभव उत्पन्न हुए हैं वो सब में वही भाव अनुभव उनमें लक्षण पैदा गए।
इतना मैं ये कह सकता हूँ कि उनको भी वो आलिंगन अनुभव होगा,
अनुभव हो रहा है
बिना किए
उनको, बिना किए ही उनको हो रहा है, क्योंकि उनके प्राण में उनके कणखंड की बातें उनमें प्रकटित है। यदि कृष्ण ने मुख में पान लिया और उसकी ललाई यदि श्रीमती राधिका के अंगों में कहीं आ गया है, वो ललाई उन पर फिर फूट जाएगी, जो कुछ उनका लक्षण होगा सब उनमें आ जाएगा। इसलिए उनको स्वतंत्र रूप में कभी से कृष्ण मिलन की इच्छा नहीं होगी। क्यों, घटिया माल क्यों हम लें, नथी माल हम लेंगे, वही माल सबसे उत्तम है कि राधिका जी को लेने के साथ साथ उनको जब सभी चीजें मिल जाती हैं तो पृथक रूप में कृष्ण के मिलने की उनकी इच्छा नहीं। इतनी निस्वार्थ होती है और इतनी निकटतम की होती है, ललिता विशाखा से हो सकता है कुछ राधा जी छिपा दें या कृष्ण छिपा दें, किंतु इनसे कुछ छिपने का नहीं, इसलिए वो खास सेविकाएं। इसलिए समर्पयी तुम उन्नत जल रसन स्वभक्ति श्रियम, पार्थिव भाव युक्त जो मधुर भाव है उसमें जो राधा जी सबसे श्रेष्ठ है, उनकी श्री माने शोभा, जैसे हाथ है ना, हाथ होने पर भी इसमें उंगलियां हैं, उंगलियों के अंत में ये नख है, नख जो है ये वडी की एक शोभा है ना, ऐसे ही अच्छा वो बढ़ जाएगी ना, नक मर जाएगा तो उसको काट लेंगे, उसे कोई हर्ज भी नहीं। इसी तरह से वो मंजरियां हैं, वो राधा जी की शोभा है, उनको छोड़ती नहीं, छाया की भांति उनके साथ है। इसी चीज को चैतन्य महाप्रभु जी का इसी में अधिकार है, नायिका स्वतंत्र में या राधा जी के जैसे भाव में अधिकार में,
किसी भी जीव का अधिकार नहीं। इसमें एक प्रश्न ये होता है महाराज,
हसिया भाव को अगर हम समझें तो ये दिखाई देता है कि एक स्त्री है विवाहिता और इसके अलावा उसका किसी अन्य प्रश्न होते हैं, लेकिन जो सखी है उसको तो राधा रानी से प्रेम है।
सबको नहीं, जो नित्य सखियां
मंजरी की बात नहीं कर
मंजरी की,
मंजरी का भाव तो फिर परकिया नहीं हुआ, क्योंकि वो तो राधा की सेविका हो,
राधिका उसमें मिलन की इच्छा है, संबंध कामानुगा ये भक्ति है, कामानुगा पढ़ा है जो इधर में ये कामानुगी है। राधा जी के प्राण प्रिय भी हमारे प्राण प्रिय है, ये भला रहती है। और कृष्ण से जब राधा जी मिलती हैं तो मालूम है कृष्ण से मिल रहे हैं,
भाव वही ग्रहण कर लेती है, इसलिए
भारतीय भाव है। और राधा कृष्ण दोनों की सेवा करते हैं, कभी कभी कृष्ण उनसे मिलने की इच्छा करते हैं किंतु मिलती नहीं, किंतु मिलन से भी अधिक उनका भाव हो जाता है। रघुनाथ दास गोस्वामी मित्र माने ब्रह्मचारी हैं, जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी सनातन इसी भाव को सबसे अधिक पसंद है। यदि होता भी है अन्य जीवों का अधिकार तो हम उसको चाहते हैं, हमारा संप्रदाय के जितने आचार्य हैं इसको बस इसी को चाहते हैं, इसलिए रूप मंजरी को शिक्षा गुरु मान लिया जाता है। तो इसी को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे, इसको कहते हैं पार्कीय भाव। इसमें आपकी आप पूछ रहे थे, इसमें कुछ पूछ रहे
हैं
जो तक विषय हो गया जो
मैं इसमें दूसरा प्रश्न ये पूछा था कि आपने यहाँ की प्रकट लीला में कहा कि पति थे लेकिन वहाँ सिर्फ भाव रहता है, और एक हमने उदाहरण दिया राधा रानी का कि उन्होंने घूमट क्या हुआ था जब वो ब्रह्मचारी के वेश में भगवान वहाँ पहुँच जाते थे, तो लीला के अंतर्गत वहाँ जो लीलाएं होती वो ऐसी ही हो रही हैं उनके पति है ऐसा होते हैं या
भाव रहता है? वहाँ पर भाव रहता है, पति अलग नहीं होता, यही भाव यहाँ पर अभिमन्यु के रूप में जिससे दूसरे रूप में जन्म लेता है।
अब यहाँ तो ये भाव अभिमन्यु है, अभिमन्यु का एक व्यक्तित्व है जो हम कथाओं के अनुसार
उसमें
क्या भाव है भगवान के प्रति अभिमन्यु का,
उसका भाव प्रतिपति का है, वो कभी इसे सुन रखा है ना, जो हर स्त्री उनसे प्रेम करती है उसे बड़ी शंका की दृष्टि से देखता है और चाहता है ये कैसे सुन न मिले और चेष्टा करता है और जब भी पकड़ने जाता है तो मानित हो जाता है। एक समय भंडी बने वो सब गोपियां और कृष्ण मिले और वहां पर मिलन में सब बिहारी इत्यादि सब चल रहा है और सब चोरी हो रही है क्या क्या, और इसी समय में वो चंद्रावली की सखी सहेली पद्मा जी बहुत कंसेंट्री क्लासेस में है जैसे लोअर क्लासेस में है, अभी उसका कोई रश अभी स्थिर नहीं किया गया है उसके स्वरूप। तो जैसे लोअर क्लासेस में जितने भी बच्चे हैं एक मास्टर के यहाँ पढ़ लेते हैं और एक ही मास्टर सबको बच्चों को पढ़ा देता है, फिर मैट्रिक तक गया उसमें भी पढ़ा सकता है, के बाद में उसको पढ़ाने के लिए एक्सपर्ट चाहिए। तो ऐसे ही इस विषय में भी जबकि साधारण रूप में वो अभी साधक चल रहा है तो मध्यम श्रेणी का गुरु हो अथवा वात्सल्य तो बहुत ऊपर की चीज है, इतना तो आपको दे ही देगा इसलिए आपका गुरु हो सकता है। तो जब उस स्टेज में पूछेंगे देखेंगे आपकी सेटिस्फाइज नहीं हो रही है तो फिर वैसा जो होगा उससे आपका संबंध हो जाएगा, भगवान भी करा देंगे और आपको भी वैसे ही लोगों से रुचि हो जाएगी जो
तो आप जिसके स्वजातीय हैं सफेद रूप धारण कर जाएगा। जैसे नारद जी हैं वेद में वो ब्राह्मण हैं, वो कुमार को उपदेश दे रहे हैं, वो साधारण में दास्य भाव अथवा अधिक से अधिक शब्द भाव इत्यादि में रखा जाता है। दासी नारद जी के लिए दासी कहा जाता है, किंतु गोप कुमार वो है सत्परस का। अब वो वहां तक तो पहुंचाई देंगे और वो बोल रहे हैं द्वारका में जाकर के भाई इसका तो इतना अधिकार है जो हमको भी नहीं है, किंतु तब तक गोप कुमार उनको गुरु मान रहे हैं और नारद जी उसका स्वरूप देखा कि उसको मनी मन में प्रणाम कर रहे हैं, कर रहे हैं ये तो हमारे बहुत ऊंचा वाला है, किंतु तब तक उसको उपदेश दे रहे हैं कि कैसे वहां पर जाया जाएगा, कैसे उनका संबंध है, कैसे है। और इसके बाद में फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर आगे बढ़ जाता है। ऐसे ही इस टाइम में अभी हम लोग कुछ रूप में है, तो अभी कोई स्पेशल प्रजाति आशय का भी वृद्धि की जरूरत अभी नहीं, अभी बहुत हम लोग नीचे हैं। फिर धीरे 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 बढ़ते 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 जब आसक्ति आएगी तो भगवान में ऐसी व्यवस्था जरूर कर देंगे, क्योंकि इसमें जो प्रश्न का उद्भव हमारे हृदय में हुआ उसका मूल ये था कि ऐसा माना गया कि शिष्य का गुरु से सनातन संबंध है। अगर सनातन संबंध है तो अब दो बातें हैं, अगर रक्त के भेद के कारण फिर संबंध बदल जाता है तो फिर संबंध एक ही संबंध टूट जाता है, नहीं वहां पर वो टूटता नहीं है। जैसे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी हैं, वो शिष्य हैं यदुनंदन आचार्य के, किंतु उनका कोई रस निर्णय नहीं किया गया और वो कौन से शांत है कि दास है सत्या दास में कुछ कभी एक तरह से उनको अभिशापक जीव कहा गया है। तो जब वो बच्चे थे तब तक तो उनको वो शिक्षा दे रहे हैं, किंतु जब ये वृंदावन में आए महाप्रभु के बाद में तो संत रूप गोस्वामी को गुरु के रूप में ग्रहण किया, शिक्षा उसमें जरूरत नहीं रही, उनकी शिक्षाओं का उनके चरित्र का इतना ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनके भाव को परकीय भाव को श्रृंगार रस को उनसे उन्होंने ग्रहण किया और उनको उसी रूप में वो प्रणाम कर रहे हैं। जगदानंदन आचार्य को लौकिक गुरु के रूप में प्रणाम कर रहे हैं और उनको अपने परमात्मा के रूप में। अब जैसे हमारे जो संसार दावानंद शिक्षक है और जिसमें ऐसा कल्पना कराई है कि गुरु जो है वो भगवान की लीलाओं के अंदर परिकर में स्थित रूप में कार्य कर रहे हैं, सखी के रूप में यह कहते ऐसे कुंज कुंज लीलाओं के अंतर्गत है, अगर हम इस भाव से गुरु को ग्रहण करें
तो आपको उस सब दृष्टि वैसे भी रखनी पड़ेगी, जैसे शास्त्र में लिखा गया ठीक वैसे ही उनको ही भगवत स्वरूप समाज से समझ करते संचार इत्यादि कभी आप वैसे ही करते चलिए। गुरु एक अखंड तत्व है जिसके मूल उद्देश्य जो है वो बल रही थी या विद्या, इसलिए वो बदलता फदलता नहीं है तो मूल वही। जैसे कोई रामचंद्र जी का भजन कर रहा था किंतु रसगत रूप में वही पक्का नहीं हुआ कृष्ण का, जब तक वो कर रहा था जैसे मैं रामचंद्र जी का उपासन कर रहे तो धीरे 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 बढ़ता बढ़ता फिर उनको लोग लगता गया और लोग लग करके यहाँ तक आया वैसे और सब कुछ। मैं यदि रामचंद्र जी से कृष्ण की तरफ आ गया तो हमारा राम से संबंध कट गया ऐसा तो नहीं हुआ ना, क्योंकि वो राम ही तो कृष्ण है ना, तो संबंध तो हमारा ठीक रहा। वैसे ही गुरु तत्व में भी नित्यानंद जी को मूल और के गए इसलिए अखंड गुरु तत्व वही है उनके लिए प्रकाश है, इसलिए इनसे जब भी वहां पर जाता है तो वो बदला नहीं। तो अगर रस भेद के कारण गुरु जब ऊपर स्टेज में पहुंचता है शिष्य तो सजातीय रस वाला जब गुरु मिल जाता है दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, पर उसके संघ और एसोसिएशन से
वो दीक्षा से भी बड़ी चीज
वही चाहिए,
वही तो असल दीक्षा
ये तो अनुष्ठान एक निष्ठा को बनाने के लिए किया गया। असल चीज है कि अपने हृदय की स्वस्थ भावनाओं को शिष्य कर निर्भर देता है, हमारा ही इच्छा है ठीक बजे हो सकता है ऐसा अभी जो गुरु है तो नित्यानंद जी के प्रकाश है, वंदे प्रभु जी के प्रकाश है, नित्यानंद जी वही शिखर
में लीला प्रविष्ट हुए, हमारा तो अभी उद्धार हुआ नहीं, हमारी उन्नति तो पूरी हुई नहीं। अगले जन्म में शायद हमारी उन्नति हो, इस जन्म में लायक तो हम इतने निकले नहीं, अब फिर हमको गुरु भगवान भेजेंगे, वो वाले गुरु तो अब हमको नहीं आएंगे।
हो सकता है वही रहेंगे, यदि एक संसार में मान लीजिए जन्म के बाद में वो गायब हुआ तो वही पति उसका बैल होकर के वहां पर जन्म लिया, और फिर दोनों में संबंध यदि उसी रूप में हो जाता है तो उसी तरह से उससे भी तो बड़ी महत्व चीज रही है गुरु और शिष्य का
संबंध, भगवान उसी गुरु को फिर भेज सकते हैं।
गोकुमार के लिए वही एक ही गुरु जहाँ जहाँ जा रहा है, और वो कृष्ण कहते हैं नारायण कहते हैं, तो मैं भाई तेरे लिए बहुत चिंता कर रहा था, बहाना बना रहा था कि किस प्रकार से तुमको यहाँ से निकाल लू, तो बहाना नहीं मिल रहा। अब वो नारायण वही बात कर रहे हैं और कृष्ण भी वही बात कर रहे हैं, तो अब नारायण और कृष्ण में क्या वैसे एक ही गुरु है, लौकिकता जब तक है पद्धति तब तक हो सकता है कुछ चेंज हो, किंतु तब वो आगे बढ़ने लग जाएगा। तब जैसे मान लें कि किसी ने सह दिया, किसी ने ज्ञानी गुरु की, तब लगा नहीं
बदलेगा, जैसे इन्होंने भी बदला था ना, शायद मारे जीवन में आता है, पहले जगन्नाथ पुरी में जाके किसी
कुंडली
में जाके उन्होंने दीक्षा लिया,
हर कोई बलदेवी बोलते विद्या भूषण,
पहले अपने उड़ीसा के हो किसी से होंगे, इसके बाद पूरी दीक्षा ले गए वहाँ पर मत्स्य संप्रदाय ने दीक्षा ली, फिर वहाँ से आगे जगन्नाथ पुरी तो वहाँ पर संप्रदाय ने दीक्षित हुए, इसके बाद जब वृंदा बनाया तो उन्होंने उनको सुना चंद्रपति का ठाकुर को गुरु बनाया, वो परमात्मा जी का ग्रहण का पत्र महाराज। अब हमारी थोड़ी परंपरा के बारे में बताओ, जब दूसरे लोग कभी कभी हमको वो कहते हैं कि तुम्हारी परंपरा नहीं है, वो किस बात को ऐसा कहते हैं और उसमें हम कैसे कर सकते हैं?
वो मूर्ख नंबर एक है, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है,
तुम्हारी नहीं परंपरा है, हमारी परंपरा खूब है, हमको मालूम नहीं कि वो किस बात में ऐसा भेद करते हैं, लेकिन आपको तो आइडिया होगा ताकि
वो कहते हैं कि आप लोगों का गुरु गैलपिंग रूप में चल रहा है, गैलपिंग गैलपिंग गुरु कैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी है, उनके गुरु कौन है? हम लोग कहते हैं जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज हैं, वो कहते हैं तो उनके तो गुरु की तिहारी थे, किंतु उनके शिष्य, तो उसी तरह से हम लोग कहते हैं कि ये सब हमने लिया उनसे विपिन बिहारी गोस्वामी से, इसके बाद में उन्होंने राधानुगा भक्ति की शिक्षा सब कुछ लिया जगन्नाथ बाबा बाजी महाराज से, सिद्ध महात्मा से, हम लोग सिद्धों को गुरु परंपरा में रखते हैं, किसी जो सिद्ध नहीं है वो गुरु परंपरा में नहीं आएगा, तो उसमें उन लोगों को गैप दिखता है, हम लोगों में ये गैप नहीं है, और किशोर दास बाबा जी महाराज भक्ति विनोद के ठाकुर जी के बाद में हम उनको देते हैं, वो कहते हैं जो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज प्रभुपाद के प्रभुपाद के हैं ये। गौर किशोर दास जी महाराज के कौन है? गौर किशोर दास जी महाराज की परंपरा है जगन्नाथ दास जी महाराज से, वो कहते हैं कि जब गौर किशोर दास महाराज जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की परंपरा में नहीं आए, वो लोग कहते हैं कि गुरु परंपरा और थी कि तो है हम लोगों में गौड़ियों में, इसलिए आप लोगों का ठीक नहीं है, इधर में भक्ति विनोद ठाकुर से जोड़ते हैं, उधर में गौर किशोर दास महाराज से जोड़ते हैं। प्रभुपाद जी का कहना है कि हमारे संप्रदाय में सिद्ध परंपराओं की गुरु परंपरा है,
वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को परंपरा में मानते हैं,
वो ये लोग कहते हैं प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम भक्ति विनोद ठाकुर ने जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का सब कुछ दिया, रघान का भजन इत्यादि जो भी है, इसलिए उनके गुरु हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी, उनको गुरु में स्वीकार करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में हम
भक्ति विनोद ठाकुर को दिया। वो कहते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर जी के प्रतीक्षा गुरु की तैयारी हो सकती है। जगन्नाथ दास बाबू जी रूप जी कैसे हो गए ये उनके समझ में नहीं आता।
ये तो देखा था नहीं, अगर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हमारे परंपरा में आ रहे हैं तो हमारी वही परंपरा हो गई।
ये परंपरा भी है हमारी परंपरा में भी
मानते हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज।
जगन्नाथ दास बहुत कुछ दास बाज महाराज को नहीं मानते हैं उनको कहते हैं जैसे उनके शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी कैसे हो गए।
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को गौर किशोर बाबा जी ने दीक्षा दिया था तो हो ही गए। ये परंपरा तो आएगी
अब तो वो कहते हैं तो फिर आप जगन्नाथ जी को इधर में क्यों खींचते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी। अब गौर किशोर दास महाराज की जो प्रसिद्ध प्रणाम लिया है जिसको उन्होंने गुरु कर दिया अब उसको तुम मानो। वो कहते हैं प्रभुपाद जी कहते हैं कि नहीं हम सिद्ध परंपरा को लेंगे महाप्रभु तक जोड़ेंगे फिर माधवेंद्रपुरी पार से मध्वाचार्य जी से नारद जी दास जी से और फिर अंत में कृष्ण से।
अच्छा एक जगह कोई और बता रहे थे स्टूडेंट कि मथुरा परंपरा से हमारी परंपरा अलग है बेसिकली अलग का मतलब जो हमारी पद्धति है पूजा पाठ की जितने महाप्रभु
ने उससे कोई अंतर नहीं आता।
वो शायद लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं
कौन
मथुरा
नहीं तो कृष्ण सभी मंत्री गोपाल
और हमारे यहाँ रागन होगा वो
क्या नहीं सभी नहीं सभी कोई कृष्ण का भी है कोई सत्य भी पार्षद से भी कर सकता है उनका वर्ण नहीं वो सब ठीक है उनको वजह नहीं था उनका कान कोई पकड़ कर करके समझाए तब समझेंगे। रागन में हुआ था ना कोई ना कहता तो सबको चले जाएगा बैठ करके महाराज को जाना दोनों ने बड़ा समझा थी बोले सब ठीक ठाक है कोई आया नहीं साथ में
बलदेव विद्या भूषण के बारे में
वो उनको हम लोगों की परंपरा से निकाल देना चाहते हैं
उनको स्वीकार करते हैं पर उनको कहते हैं वो मथुरा परंपरा में नहीं ना इस गौरी परंपरा में नहीं।
वो कहता है कि बलदेव विद्या भूषण जी ने आ करके कुछ गड़बड़ कर दिया है उन्होंने हमारे संप्रदाय को भी दिया उनको भी मिला करके कुछ चीज बता दी इसलिए उनको बाहर रखने से और हम लोग की कृपा क्या भक्ति विनोद ठाकुर जी वो कहते कि नहीं ये जीव गोस्वामी के आरंभ से ही ये सब उस परंपरा में मतलब संप्रदाय से हम लोगों का संपर्क है और कोई यदि किसी संप्रदाय में रहे और आकर के रूप गोस्वामी का अनुभव हो जाए भी सुना हमारी परंपरा का जब भूषण नहीं आते तो गौरी वैष्णव को कभी कान पकड़ करके निकाल दिया गया होगा जयपुर में वही लोग संप्रदाय बचा गए और ये सब कृतज्ञ है उन लोग को कोई ज्ञान नहीं किंतु अधिकांश बाबा जी मानते हैं हम कहते हैं कि हम हमारे गुरु की प्रज्ञान के सब उस और एक बाहर का आदमी कह रहा है जैसे आप उनके शिष्य नहीं है तो ये बता रहे थे हम शिष्य हम उनसे करेंगे किंतु निर्णय करेगा हमारे गुरु जी का यही बात है ऐसे मूर्ख है कि हमारे गुरु के वो निर्णय करेंगे बाहर के एक आदमी।
ठाकुर महाराज कह रहे हैं कि मैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से
शिष्य हूँ
लेकिन बाहर वाले कहते नहीं तुम शिष्य नहीं हो ये बात
वो हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं तुम कुछ दो चार ऐसा सुना देंगे जब फिर कभी जन्म उनको बोलने
के आगे आते जब भी हम मित्रों में आगे ये बोलते रहते हैं हम तो बोलते जो भी समाज में आते हैं
कौन कहता है
हम लोग
कहा जरा हमसे मिलाएंगे तो थोड़ा सा कभी
मेरे से नहीं बोलते महाराज मेरे से डरते हैं मैंने आपको एक बार बताया था ना एक वो था उसने मेरी मिस्टेक निकाला
वही ना
वही आती मेरे से सीधा बात नहीं करता मेरे मैं जैसे जाऊंगा तो मेरे पैरों को पकड़ेगा जी डबल रोल अदा करते हैं लेकिन वो लोग जो मेरे से सुन के और भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं उनको बरगलाते हैं उनके साथ में जैसे बरगलाते हैं
अजय तुम्हारा गुरु ठीक नहीं है तुम दूसरों की निंदा करता है तुम वैष्णव अपराधी है तुम विचार करने वाला हमारा नहीं है आज हमारा संप्रदाय हम लोग नहीं रहते आज विश्व में जो महाप्रभु जी का और कृष्ण का नाम प्रचार हुआ इसी से तुम लोग जल करके हृदय में जल रहे और नरक में तुम लोग जाएगा वृंदावन में राधा पर संपत कर जाते हैं उनका कई लोगों को अलग बैठा हूँ लोगों के साथ नहीं उनका छुआ हुआ पानी भी हम लोग नहीं
निंदक है
बाबा जी स्थान है उन लोगों से डर करके उन लोग गुरु करना है साथ में ऐसे खत्म किया ताकत हमारे सामने आ जाए विचार करके
कोई नहीं
है। जैसा पीछे पीछे भाग रहा है ये ठीक उचित नहीं
महाराज।
इन्होंने जो पहले टीका लिया था विपिन बिहारी जी से लिया था
बचपन
बचपन में, वो परंपरा में नहीं थे क्या विपिन बिहारी?
बचपन में तो सभी लोग आए, किंतु सिद्ध परंपरा में नहीं है। सिद्ध किसको कहते हैं? कर्तव्य है इतना लीला का कुछ खबर रखता है जैसे भक्ति में उठा कर ये लोग सब सिद्ध करते हैं। ये सिद्ध है, उनको आत्मानुभूति हो गई है और वो लोग सब अभी अनर्थग्रस्त ही पैसे के लिए बिजनेस करते हैं गोस्वामी लोग के अंतर्गत। इसलिए प्रभुपाद जी को एक बार प्रभुपाद जी बिगड़ गए, भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर पर विपिन बिहारी गोस्वामी आए तो उनको साष्टांग प्रणाम किया उनके चरण के। जब साष्टांग प्रणाम किया तो उनके सिर पर उन्होंने अपना पैर रख दिया। प्रभुपाद जी वहां पर थे, अभी बच्चे थे 14-15 वर्ष के। भक्ति विनोद ठाकुर जी दूसरे कमरे में जब चले गए उन्होंने कहा आपको लज्जा शर्म नहीं आई, आपको अपराध का डर नहीं हुआ? एक मुक्त पुरुष अपनी दीनता से ऐसे आपको प्रणाम कर रहे हैं और आपने अपने चरणों की धूली अपने चरण रख करके दिया, आप मर क्यों नहीं गए? ऐसा कहा जैसे फिर उसी दिन वहां से भाग गया और भक्ति विनोद ठाकुर के हथी नहीं आया।
स्वामी
ने प्रभुपाल ने कुछ कहा होगा और तुमको तुम पत्र जीव समझता है? अरे तुम विचार करता जी इतने ग्रंथ जैसे जैसे लिखे हैं उन पर लिखकर सप्तम गोस्वामियों के बाद में यही सप्तम गोस्वामी है इसको विश्व सभी स्वीकृत करते हैं और तुमको तनिक भी डर नहीं लगा?
असल में प्रभुपाल जी खुद मुक्त थे, वो तो सब देख रहे थे कौन कौन सी स्थिति में स्थित है तो इसलिए उन्होंने ऐसा
बोल दिया। ऐसा क्या ना जिसे तो कभी आए एक बार अपनी मैया को और अपने भाइयों को डांट दिया छोटे सबसे ये थे और ललिता प्रसाद जी बड़े थे और उनकी मैया थी तो वो कुछ ऐसी बातें चल रही। उन्होंने कहा तुम लोग इतना भोगी हो गया है अपनी माँ को बढ़ा इतना तुम भोगी हो गई स्थूल तुम्हारा विचार भक्ति विनोद ठाकुर इतने पार्षद भगवान और तुम लोग समझते कि गैया है इनको दूर ले और जैसे तुम लोग स्वार्थ चाहता है उनके पैसे चाहता है उनको ये चाहता है और तुम लोग एक मत बुद्धि उनके पर आते हो तुम लोगों का नरक बना लेते हैं। मुक्त पुरुष नहीं समझते उनको आदर नहीं दे सकते। बड़े कठोर थे प्रभुपाद जी। अरे नई बात है सब एक एक जीवन उनके शिष्य हुए हैं ब्रह्मांड बताए जो ब्रह्मांड का एक उद्धार किया ना सब जिधर जिधर गए हूँ कोई भी शिष्य बिना पढ़ा लिखा एकदम देश का देश विजय किया
वैसे इतना सख्त और मतलब छोरी जैसी बात कहने वाले
जगत उस समय कोई नहीं था आज भी नहीं होता तो ऐसे शिष्यों को लेकर विश्वभर में प्रचार किया है। उन लोगों को तो ना कर देना चाहिए इन लोगों की चरण की दूरी में हम लोगों की चरण की दूरी में यदि हमारा सब ये सब भक्ति सिद्धांत वाला नहीं रहता कि आप लोग तो प्रचार होता ना अभी उनके पास में जो आ रहे हैं हम लोगों ने ऐसे छिटके छिटके हम लोगों को जिनको निकाल देते हैं ना अनक्वालिफाइड करते हैं उनके यहाँ बाबा जी लोग
बिल्कुल
हमारे वजह से आज बच ही रहे हैं। ये होने के बाद तो मैं तो एकदम बड़ल से कहता हूँ पैसा माने चाहिए तुम लोग डूब जाओ तुम लोग कर पाए।
वो जो जो लड़का आया ना जो पॉइंट ने पहले वो इस फोन में आया था इन्हीं कारण है कि पहले नहीं था
वही रह रहा है वो अनक्वालिफाइड हम लोगों से जो हो जाते हैं वहां पर जाते हैं। पता है ऐसे ऐसे जेल लड़के उन लोगों के पास एक भी पढ़े लिखे लड़के हैं जितने कमार हर गृहस्थी से जब निकल गए घर वालों ने कॉल किया वैसे लोग उनके यहाँ पर फर्क पड़े।
हुआ ये महाराज मैं उनके घर गया तो बात कर रहे थे तो चर्चा चल रही थी तो मैंने कहा कि हमारे नियम चार हैं जिसमें नशा नहीं करना चाय कॉफी नहीं पीते हैं तो उसी समय चाय कॉफी बन गया वो पी रहे
हैं। यही बात हुई
वो बोलते हैं जो चाय कॉफी पीता है
वो भगवान को नहीं जानते होंगे, वैष्णव नहीं है,
नहीं है,
मैंने कहा अभी तक नहीं है,
बोला मैंने एकदम नहीं है, इतनी चीज छोटी सी चीज नहीं छोड़ सकता है क्योंकि भागवत में लिखी है तो वैष्णव कहेगा।
वो बोलते कैसे नहीं पहुंचेगा, मैंने कहा एक छोटी सी बात है, क्या आप चाय कॉफी को भोग लगा सकेंगे, नहीं लगा सकते भोग,
फिर कैसे,
फिर आपने अगर बिना भोग के पी लिया तो विष पे भी विष पी दिया ना,
वो तो सब्जी आपने खाई,
फिर आप कहते
हैं शास्त्र में एक श्लोक है याद करना है, यदि पानी पीता है बिना भगवान का भोग लगा तो वो मूत्र पीता है और कोई चीज खाता है तो वो शक्ति खाता है, ऐसा लिखा है शास्त्र में, इतनी चीज याद नहीं कर सकता है वो भगवान के लिए क्या क्या कर सकता।
एक बार मैं डॉक्टर प्रजापति के तक वहां गया था जगन्नाथपुरी और वहीं आपके मठ पे रुका था धन नगर के साथ, तो वहां एक पास के मठ में अपने को वैष्णव कह रहे थे, वो आके बोलते हैं वो ही मैंने बहुत कीर्तन किया कि हमें और पुरुषोत्तम वहां से आप लोगों का परंपरा में कुछ गड़बड़ी है, पतंग में तंबाकू तंबाकू बोल रहा है, अब मैं पहले जानना चाहता हूँ मेरे अंदर क्या होता है कि मैं ना गुण तक पहुंचना चाहता हूँ ताकि कभी कोई बोले तो उससे बात हो, तुम किस बात को कहते हो, मैं तो बिल्कुल कल्पना भी नहीं करता था ये बात होगी, मैं पूछना चाहता था पर कुछ समय पुरुषोत्तम का मेरे ऊपर प्रभाव बहुत जबरदस्त था, वो खींच लिया, बोला हमने इनसे बात ही नहीं करनी है, इन्होंने हमारी परंपरा की बात भी नहीं करनी, बात तो ठीक है लेकिन पहले पता चले इनके दिमाग में क्या है, नंदनंदन से हम बात करेंगे, फिर नंदनंदन से बात की तो नंदनंदन ने ये इतनी खोल के हमें बातें नहीं बताई, बोलते हाँ बोलो कैसे आएंगे, अब क्या है अब जब पता चला ना, अब जब कभी वो ऐसी बात करेंगे तो हम उनके मुंह
से साथ उसको सकार बकार से गाली देंगे,
गाली देने जानते हैं कि सकार बकार जानते हैं,
तुम्हारे पिता का ठीक नहीं है मैया का ठीक नहीं है इसलिए तू ऐसा कर रहा है, हमको तो आग लग जाती है और चैलेंज दे देता,
कहीं से
उखड़ जाता उस समय कंट्रोल नहीं कर पाता,
जिन्होंने भक्ति सिद्धांत रूपा जी की ऊपर उंगली लगाई है इसका मतलब है कि वो आदमी का किनारा गया उसका मतलब है ही नहीं,
वो वैष्णव पर आदमी है चीज की बात है,
जो इतने चुकौटी के अखंड भ्रम जारी और मुक्त पुरुष से तू है। अच्छा एक बात पर पूछनी है महाराज कि ऐसे हमारे यहाँ दैन्य और दीनता बताई गई है लेकिन रूपा जी शेर की तरह आए थे, उसमें दैन्य दीनता
दीनता की पराकाष्ठा उंगली में है, पराकाष्ठा चिंता समझनी चाहिए ये क्या चीज है, जैसे हमने लंका जला दी किंतु दीन ही है ऐसे ही, वो कृष्णदास वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है, ऐ तो परिहाय वो जे पापी निंदा करे।